ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पुराण से पाठ षष्ठ स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 18। श्री शुक उवाच। इंद्रो वृत्रवचः श्रुत्वा गतालीकमपूजयत् गृहीत वज्र प्रहंसं स्तमाह गत विस्मयः। श्री शुक अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। श्लोक संख्या 17 और 18 था आज, तो 17 का केवल अनुवाद पाठ करते हैं, तात्पर्य इसमें नहीं है। प्राणग्लहोयं समर इसख्यो वाहनासन अत्र न ज्ञायते मुस्य जयो मुस्य पराजयः। अनुवाद 17 नंबर श्लोक के। मेरे शत्रु, इस युद्ध को द्वित क्रीड़ा का खेल मानो जिसमें हमारे प्राणों की बाजी लगी है। बाण ही पासे हैं और बाहक पशु ही चौसर हैं। कोई नहीं जानता कि कौन हरेगा और कौन जीतेगा, यह सब भाग्य पर निर्भर है। श्लोक 18 के अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, धृतराष्ट्र के निष्कपट तथा साधु वचन को सुनकर राजा इंद्र ने उसकी प्रशंसा की और अपने वज्र को पुनः हाथ में धारण कर लिया। इसके बाद बिना मोह या द्वैत भाव से वह हंसा और वृत्रासुर से इस प्रकार बोला। तात्पर्य, देवताओं में श्रेष्ठ राजा इंद्र को अपने शत्रु वृत्रासुर का उपदेश सुनकर आश्चर्य हुआ। वह चकित था कि असुर होकर भी कितने ज्ञान की बातें कर रहा है। तब उसे प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे परम भक्तों की याद हो गई, जो असुरों के ही कुल में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई। कभी कभी तथाकथित असुरों में श्री भगवान के प्रति अतीव भक्तिभाव रहता है, इसलिए इंद्र विश्वासपूर्वक वृत्रासुर की बातों पर हंसा। जय जय कृष्ण जगन्नाथ, जय वैकुंठ नाम धृक, जय देव कृपा सिंधु, जय लक्ष्मीपति प्रभु, जय नीलांबुज श्याम नीलजीमुत सन्निभ, जय पद्माधरी त्रिभ्याम निसेवित पदाम्बुज, जनार्दन जगत बंधो शरणागत पालक, त्वं दास 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 दासानं दासत्वं दहि मे प्रभो, दासत्वं दहि मे प्रभो। तो सबसे पहले हम आप सबसे क्षमा याचना करेंगे कि यद्यपि गौरांग प्रभु के आदेश के अनुसार मुझे ये कष्टसाध्य कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए मैं नितांत असमर्थ हूँ, फिर भी आपका अंग्रेजी भाषा पर यहाँ कथा चलने का विधि है। मैं इतना समर्थ नहीं हूँ अंग्रेजी भाषा पर, तो हिंदी में कहने के प्रयास करता हूँ, तो कोई गलती त्रुटि हो तो माफ करेंगे। तो ये जो प्रसंग मृतासुर की मृत्यु, कई कई महान भागवत वेत्ता पुरुष भागवत के पहचान करते हैं कि भागवत वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ में श्री मृतासुर का आख्यान वर्णन हुआ है। क्यों, ये कोई विशेष है? हाँ, विशेष तो है। जैसे आप यहां पढ़ते हैं कि मृतासुर एक असुर है, वो कोई साधारण असुर नहीं था। जो पूरे जब वृतासुर का प्रकट हुआ था, संपूर्ण देव समाज कांप उठा, उसके भयानक रूप को देख करके, इतने भयानक असुर था। और युद्ध भी आप देखे होंगे, अभी चल रहा है, किस विकट युद्ध कर रहा है अकेला, जबकि सारे दानव लोग छोड़ के चले गए। जिसको मारने के लिए देवता लोग विष्णु के पास जाकर के प्रार्थना करना पड़ा, भगवान विष्णु उनको बोले कि उसको तो आपने अस्त्र शस्त्र मार ही नहीं सकते, दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनके अस्थि की ला करके वज्र बनाओ। वज्र बनाना पड़ा, नारायण कवच के सुरक्षा लेना पड़ा, भगवान के साथ लेना पड़ा, तब जाकर कहीं वृत्तासुर को विजय हुआ। लेकिन फिर भी इस युद्ध के स्थल पर वृत्तासुर के जो बातें हैं, जो प्रवचन है ये बैटल फील्ड में, उसको बहुत सोचने का विषय है, बहुत विचार करने का विषय है। बहुत सारे भक्त हुए हैं, बहुत भक्ति में भगवान के सामने मंदिर में बड़े सतोगुण में रह करके, परिस्थिति में रह करके, इसे समय पर आड़ लेकर के उन्होंने प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की, भक्ति याजना की। लेकिन वृत्तासुर एक ऐसे अनोखी भक्ति का एक अद्भुत चमत्कार है कि भगवान के भक्त कैसे हो सकता, कैसे उनको पहचाना जा सकता। देखने में तो अति भयानक बलिष्ठ असुर है, हाथ में त्रिशूल गदा लेकर के इंद्र के ऊपर मारने जा रहा है, जो इंद्र, भगवान इंद्र को हमेशा सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है। इंद्रारी व्याकुलो लोके मुणयन्ति जुगे जुगे, भगवान का एक कर्तव्य है, हमेशा इंद्र को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसके लिए अवतार भी लेना पड़ता है उनको। वृत्तासुर के पता था कि ये भगवान की प्रोजेक्ट है, भगवान उनके साथ है, और मेरे मृत्यु के लिए उन्होंने दधीचि ऋषि से अस्थि लेकर के वज्र बनाया है केवल मेरे लिए। उसके पहले इंद्र के पास से 77 वज्र नहीं था, मृतासुर के लिए ही बनाया गया था। मृतासुर के पता है, कोई बोलेगा ठीक है, अगर मृतासुर असुर होने के नाते इतने बड़े भक्त है, उसको सब ज्ञान है भक्ति का, भगवान का, भगवत संबंध का, तो फिर काहे को लड़ाई किया। वही बोल देता इंद्र दे वज्र मार, मुझे मार दे, खत्म। नहीं, उन्होंने बाकायदा युद्ध किया, युद्ध के अनुरूप व्यवहार किया, भाषण भी किया, उनको ललकारा। इंद्र ने उसको वज्र मारा, पहले इंद्र ने उसको जो अस्त्र फेंका उसको उठा करके बाएं हाथ में वृत्तासुर ने ऐसे उठाकर दोबारा उल्टा मारा उसको, उसके ऐरावत जो मत्त गज, इतने बड़े हस्ती था जिसका पर इंद्र महाराज चढ़कर आते थे युद्ध में, उस हाथी के ऊपर लगा वो अस्त्र को, उल्टा हाथ में लेकर फेंका उन्होंने उसी के अस्त्र को, बोलते 14 गज पीछे हट करके वो गिर पड़ा इंद्र के साथ में, इंद्र उसके पीठ में बैठे हुए थे, वो हाथी चितपटांग गिर पड़ा पीछे, इतने लगभग 40-42 फीट पीछे चला गया। इंद्र उनको बड़े कसर से मारे थे वस्त्र को, लेकिन उसको बाएं हाथ में उठा लिया और उसी में दोबारा वार किया कि ये हालत हुआ। उसको देखकर तो देवगण भाग गए, इंद्र का साहस ही नहीं हुआ कि मैं उठ करके लड़ाई करूं, उनका साहस ही फेल होना था, मैं कैसे करूं। तो वृत्तासुर उनको ललकार, नहीं उठो लड़ो फिर, तेरा हाथ में वज्र है वज्र मारो। तो इतने उनको एनकरेज किया, इतने उत्साहित किया इंद्र को, तो इंद्र ने वज्र मारा, वज्र मार करके उनका हाथ को काट दिया और उनका अस्त्र गदा आदि को काट दिया। लेकिन फिर भी एक लोहा मुसल लेकर के उन्होंने इसे मारा इंद्र को कि उनका हाथ से वज्र ही गिर पड़ा, इंद्र ही गिर पड़े, उनका हाथ से वज्र ही गिर पड़ा। तो इस तरफ इस बात पर इंद्र ने बहुत लज्जित हो गए और उनको शर्म लग रहा था कि दोबारा नीचे से वज्र को उठाकर फिर हाथ में ले, बहुत शर्म आ रहा था, बिल्कुल लज्जित होकर खड़े थे साइड में और सोच लिए थे कि नहीं अब उनको परा नहीं जा सकता। लेकिन फिर वृत्तासुर ने दोबारा उनके सामने फिर उनको ललकार करता है, उनको उपदेश भी करता है। इस उपदेश के छल में इस श्लोक को बोलता है वृत्तासुर इंद्र के लिए, बोलते हैं कि इंद्र तू तो मुझे मारने के लिए ही आया है और मारने के लिए ही ये वज्र धारण किया है। भगवान विष्णु का आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपके साथ हैं भगवान विष्णु, मैं ये बात को जानता हूं। तो फिर कहे को प्रयास नहीं करता है मारने के लिए? अरे युद्ध में तो ऐसे ही होता है, लड़ाई के मैदान पर कोई नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा कोई हारेगा, ये तो गैम्बलिंग मैच है, जुआ के खेल जैसा है। 64 उपमा दिया गया, वृत्तासुर ने उपमा देता है एक 64 खेल जैसा, इसमें बाजी रखा गया हमारे प्राण को, प्राण को बाजी देकर लड़ना है और जीतना हो हारना हो तो भाग्य के ऊपर छोड़ दो। लड़ाई के लिए उत्साहन करता है, उत्सुक करता है वृत्तासुर ने आज इंद्र को। हम ठीक है इसे एक अवस्था देखे थे महाभारत युद्ध के शुरुआत में, महापराक्रमी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए ललकार करने के जो शंख बजाने के बाद भी उनका ये हालत हो गया था कि शोक संविग्न मानस गंडीवं संस्कृति हस्ता त्वचैव परिदह्यते, धनुष बाण को नीचे फेंक करके कांप रह करके सर में हाथ देकर बैठ गए थे रथ के ऊपर, भगवान सामने ही खड़े थे स्वयं। भगवान बोले क्या नाटक कर रहा है, बीच में लाया सारे तैयार है, मुझे बोला मेरा रथ बीच में ले लो मैं देखना चाहता हूं मेरे साथ कौन लड़ाई करेगा, बड़े हांक मार के मुझे बोला मैं बीच में लाया, अब ये नाटक यहां पर ला कर बीचों बीच खड़ा होकर खुद ही बोर मुझे ही बोर कर रहा। तो भगवान को पूरी भगवत गीता 18 अध्याय बोलने पड़ा, केवल क्या कारण था, केवल अर्जुन को युद्ध में उत्साहित करने के लिए कि लड़ो, युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए ही आज भगवत गीता प्रकट हुआ, जिसके द्वारा अर्जुन लड़ाई मैदान में फिर उत्साह से लड़ा। कितनी आवश्यकता है लड़ाई और उत्साह के लिए, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ धर्म के उच्च है, जो ज्ञान की आगार है वो भगवत गीता, उसके प्राकट्य तो केवल युद्ध में उत्साहित करने के लिए ही हुआ था मैदान के ऊपर। भगवान अर्जुन को कहते हैं सुख दुख समं कृत्वा लाभ लाभोर जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्यो नयो पापं विहारसि, कहते हैं अर्जुन आप लड़ो। आप बोलते हैं लड़ते किसके लिए कोई लड़ता है, युद्ध किस लिए कोई करता है, जीतने के लिए, चाहे जीत होगा नहीं तो हार होगा, ये दोनों से तो एक होगा, लड़ाई का और क्या परिणाम हो सकता है, हो तो युद्ध में विजय हो नहीं तो हार हो पराजय हो, यही दोनों से तो तीसरा कुछ है ही नहीं। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन आप जीतने के लिए भी मत लड़ो, ये मत सोचो कि अब जय विजय प्राप्त करेगा, नहीं तो हारने के लिए ना, नहीं हारने के लिए मत लड़ो, तू जीतने के लिए भी मत लड़ो हारने के लिए भी मत लड़ो, जय और पराजय से परे युद्ध करो, लेकिन जय के लिए नहीं कि पराजय के लिए, और फिर किस लिए लड़ूं भाई, किस लिए युद्ध करूं, जय की इच्छा भी नहीं पराजय की इच्छा भी नहीं, अच्छा कोई सुख मिलेगा क्या, नहीं सुख के लिए भी मत युद्ध करो, सुख प्राप्ति की आशा छोड़ो, तो फिर क्या दुख मिलेगा इसके लिए लड़ो, ना दुख के लिए भी नहीं, दुख के लिए भी मत लड़ो, तो फिर किस लिए लड़ो भाई, और क्या हो सकता है, कुछ लाभ होगा क्या लड़ने में, ना नहीं लाभ के लिए भी मत लड़ो, कुछ लाभ नहीं होगा फिर भी लड़ो, ना हाँ लड़ो तो कुछ क्षति के लिए लड़ू क्या, क्यों हानि हो जाए, ना नहीं हानि के लिए भी नहीं, गजब का बात है, मैं युद्ध करूंगा जीत के लिए नहीं हार के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं कि दुख के लिए नहीं कि लाभ के लिए नहीं कि क्षति के लिए नहीं, तो किस लिए लड़ो, बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान बोलते हैं अर्जुन ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध करने के लिए युद्ध करो, लड़ने के लिए लड़ लो, ना कि इसके लिए, इस प्रकार मनोभाव से अगर लड़ेगा नैव पापम विहारसि, युद्ध के जो पाप रिजल्ट है जो रिएक्शन है अब छुएगा भी नहीं, निष्पाप, ये सब करते हुए अब अलग रहेगा उससे। ठीक इसी बात को वृत्तासुर ने दोहरा रहे हैं कि इंद्र तू लड़ो, लड़ने के लिए आया है, युद्ध के मैदान है, यहां पर हार जीत को छोड़ दो, कौन हारेगा कौन जीतेगा कोई पता नहीं, लेकिन यह भी निश्चित कह देता हूं मैं तो मरूंगा, मैं मरना ही चाहता हूं। उसके पहला अध्याय में वो युद्ध मैदान में मरने के लिए तत्पर होकर के इंद्र को उत्साहित करते हुए मृतासुर का जो उद्गार है, भगवान को जो स्मरण करता है उसी युद्ध के समय में समर प्रांगण में, जिसका अभी हाथ कट चुका है, अस्त्र टूट चुका है, अभी ऐसे दयनीय स्थिति में, असहाय स्थिति में भी उनका अंदर जो भगवत भावना है, जो भगवान की प्रार्थना मूलक जो पुकार है, जो विनती है, जो प्रार्थना है, वो विचारने लायक है। तुरंत हाथ जोड़ के इंद्र को बोलता है कि मारो, वो बोलता है मैं तो मरना चाहता हूं, ये शरीर तो मैं मरघट में फेंकना चाहता हूं, जल्दी इसमें मैं कर्म श्रृंखला से मुक्त हो जाऊंगा। कैसे मुक्त हो जाएगा? क्योंकि यही तो एक चांस है, यही चांस है। भगवान भी ये कहते हैं गीता में अर्जुन को अष्टम अध्याय, मृत्यु एकमात्र समय है, दिस इज फाइनल एग्जाम, उसी के समय अंते नारायण स्मृति, अगर अंत काल में नारायण के स्मरण नहीं आया तो प्रभुपाद जी ने कहते हैं मंगल में भजन करो, साधन करो, मरते जान ले है। अगर मरने का कलाम नहीं सीखे तो जीना बेकार है, सारे भजन भी बेकार है, क्योंकि मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक में एकमात्र सबसे प्रोमिनेंट वर्क है मरना। हम सभी जन्म लिए केवल मरने के लिए है, सारे दुनिया में समस्त वस्तु यहां आता है केवल मृत्यु के लिए, मरना ही मुख्य कार्य है यहां। वही मरने को, मरने का तरीका, उसके टेक्निक, उसके ढंग को अगर नहीं समझे, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर को छोड़ते समय अगर हरि स्मरण न हो पाया तो सब फेल। जंग जंग भाव स्मरण एवं त्यजंती अंते कलेवरम, कलेवर के अंत समय में जिस जिस भाव को आप भावित होंगे वही भाव को प्राप्त तो करेंगे। अब युद्ध में अब अस्त्र शस्त्र छिन्न हो जाने के बाद, हस्त कट जाने के बाद भी शत्रु के सामने इस भावना को ले बैठा है पितासुर, हमको तो थोड़ी सी भी जुखाम बुखार हो जाए माला हाथ से छूट जाए, क्या करेंगे। तो भीषण संग्राम के बीच में इंद्र जिसे महान शत्रु के सामने वज्र हाथ में लिए खड़ा हुआ है, फिर भी भगवत भावना इतने हद तक वो प्रार्थना कर बैठते हैं पितासुर, अहं हरि तव पाद मूलेन दासम, हे हरि मैं आपके पाद मूल के दास दासानुदास बनना चाहता हूं। प्रभुपाद जी ने श्लोक के तात्पर्य पहले लाइन में लिखते हैं दिस इज सम एंड सब्सटेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति का सार ही है किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में जैसे भी कैसे हो, अगर मन को भगवान में इसी प्रकार लगा दिया जाए, इस प्रकार भगवत भावित हो आ जाए तो ही भक्ति की पराकाष्ठा। अजात पंख इव मातर खग स्तन्यं जथा वत्सतरा खिदार्त, क्या उपमा दे रहे हैं। अब इसमें तो आगे नहीं वर्णन, बड़े बड़े व्याख्याकार ऐसे कहते हैं कि उनका भाव को देख करके पितासुर का क्या भाव था हम सोच भी नहीं लगा सकते। वो बोलता है कि जैसे मैं तो है प्रभु, मैं आपको इसी कातर भाव से चाहता हूं, आपके सेवा के लिए, आपके दर्शन के लिए इस प्रकार ललायित होना चाहता हूं, इस प्रकार भाव से भावित होना चाहता हूं हे प्रभु, जिस प्रकार अजात पंख कोई छोटा सा चिड़िया के सावक, पक्षी सावक जिसका अभी पंख जात नहीं हुआ है, जिसका पंख अभी उगा ही नहीं, किसे असहा है, उसका घोंसला से बाहर निकल नहीं सकता, उसको खान पान तो पूरा पूरी वो अपने जो माता पक्षी है उसका पर निर्भर करता है, वो बाहर जाएगी और जो घूमघाम करे, जो लेकर आएगी अपना मुख से आधार, वही लाकर देगी, उसी के ऊपर दिन भर वही रास्ता टाक करके बैठा रहेगा। ये अजात पंख खग, जिस छोटा पक्षी सावक का पंख नहीं उगा है तो केवल मां के चंचू का आधार के ऊपर भरोसा करके दिन भर टक बैठता है कि कब आएगी, कब मेरा मुख में आधार देगी। दूसरा उपमा देते हैं स्तन्यंग, जैसे बछड़ा, आप सब गोपालन जिस जानते हैं, गाय का जब बछड़ा होता है वो दूध दूने के लिए बछड़ा को अलग रखा जाता है, गाय जाएगा चरगाह में, जब आएगा वो तभी बछड़ा को थोड़ा पीने के लिए देकर फिर दूध निकालने पड़ता है। तो बछड़ा दिन भर वही सोच में रहता है कि कब मेरा माँ आएगा, कब मेरा मुख में दूध मिलेगा, क्योंकि वही उसका केवल आधार है, दूसरा कुछ खा नहीं सकता, उन्हें वही उसका भरोसा है, वही उसका एकमात्र आनंद है, सब कुछ वही है, मातृस्तन्य इस बच्चे का। भगवान को इसलिए बच्छल्य शब्द लगा गया, भक्त बच्छल करके, क्योंकि गाय का बछड़ा के प्रति जो शुद्ध अनाविल प्रेम है वो बाकी किसी प्राणी में नहीं दिखाई पड़ता, बाकी किसी प्राणी में नहीं। हम मनुष्य लोग प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ करके मानते हैं अपने आप को, है भी बुद्धि के विवेक के विचार के मारे में, लेकिन इस अनाविल प्रेम के खाता में हम पीछे हट गए, उसके सामना नहीं कर पाते। जैसे गाय का प्रेम अपने बछड़ा के प्रति है, ऐसा हमारा नहीं है। जब गाय बछड़ा पैदा करता है तो पैदा करते समय जो तत्काल में बछड़ा के साथ कितने जो गंदा चीज बछड़ा के साथ आता है ना, लार, रक्त और क्या क्या सब जो उसका पेट से अंदर निकलता है, इतने अति दुर्गंध वस्तु जो बछड़ा के साथ तुरंत जन्मजात बछड़ा के साथ जब निकलता है, तो उसको ओ माता गाय ने बिल्कुल देख नहीं रख, दृष्टिपात ना करके इतने स्नेह के अंध हो जा अंधी हो जाती है कि उसको यद्यपि उन्होंने शाकाहारी प्राणी है, कभी ऐसा आमिष भोजन करती नहीं, लेकिन फिर भी इस समय उस स्नेह के अंध होना के कारण उसको चाट चाट कर खा लेती है। कोई स्त्री ऐसा नहीं कर सकता, वो तो धोना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कोई नर्स भी आएगा, खुद अपना हाथ तो नहीं कर सकते। क्या अनाविल प्रेम है। अगर गाय जंगल में चरगाह में है, गोचारण की भूमि पर है, और घर में वो बछड़ा है, कभी भी उनके बछड़ा को जो हम्मा करके जो आवाज करता है, आवाज सुनाई पड़े गाय को, घास को चरते हुए मुंह में घास चुबाते हुए उसका कान खड़े हो जाएगा, पूंछ खड़े हो जाएगा, वही से दौड़ लगा देगा, मानेगा नहीं, अपेक्षा नहीं कर सकता मैं चुबा के खा लू, नहीं। इतने अनाविल स्नेह है, बाकी किसी प्राणी में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए भगवान भी अपने आप को इस शब्द से लगा रखे हैं, मेरा भक्त के प्रति जैसे स्नेह है, जिस प्रकार इस दुनिया में गाय का बछड़ा करते, इसलिए भक्त के साथ बच्छल्य शब्द दे, मैं भक्त बछड़ा शब्द से बच्छल्य शब्द ले आ गया, भक्त बच्छल। तो बोलते हैं इस प्रकार इससे जो बछड़ा है, जो माय के दूध के आशा रखता है, वो केवल इसी को आनंद, इसी को सब कुछ मानकर टाक रहता है, ठीक इसी प्रकार मेरा दशा हो जाए प्रभु, मैं केवल आपको ही सब कुछ मान करके आपकी आशा कर बैठूं। और बोलते हैं एक जैसे युवती स्त्री जिसका पति अभी विदेश गए हुए हैं, वो सती स्त्री है, तो शयन में स्वप्न में जागृत अवस्था में हमेशा उनका यही ध्यान मनन चिंतन केवल होगा उस स्त्री की, कि कब मेरे पति देव, कब मेरे प्रभु आएंगे, सर्व प्रकार से मैं उनसे ही आनंद प्राप्त कर पाऊंगी, केवल यही विचार यही ध्यान लगती है। इस प्रकार ध्यान इस प्रकार भाव से भावित होना मैं चाहता हूं आपके प्रति, हे प्रभु आपके सेवा के प्रति मेरा मन अंदर में इसी प्रकार भाव आ जाए, तथा इस प्रकार भाव आ जाए। इस सदृश, इस हर जगह पर इव इव सदृश लगाकर बोलते, इसी प्रकार भावना। कोई कहे ठीक है आप बोलते हैं कि अजात पंख खग मातर इव, अभी खग का वो पक्षी सावक का अभी सिना पंख नहीं उठा है, अब पंख नहीं भी उठा है इस स्थिति में भी अगर वो माता पक्षी ने अपने चंचू में आधार लेकर आकर उसको खिला देता है तब तो शांत हो जाएगा ना, जो अतृप्त सावक अब तो तृप्त हो जाएगा है ना। नहीं, यहां वृतासुर कहते मैं इस तरह उत्तृप्त नहीं होना चाहता हूं, केवल इसी में फर्स्ट ग्रेड में रहना चाहता हूं, वो आकर के मुझे तृप्त कर ले, नहीं भक्ति में कभी तृप्ति है ही नहीं तो भक्ति का है, इसीलिए इसी में रह जाते हैं, आगे बात नहीं कहते। बछड़ा को अगर उसका माता गाय आकर के उसके पास आ जाए और दूध पी ले पेट भर के तब खेलेगा, शांत हो जाए, बोले नहीं मैं इसे शांत नहीं होना चाहता। उस विरही स्त्री सती स्त्री को अगर उनका पति विदेश से आकर के उनको सुख प्रदान करने लगता है तब वो सुखी मान जाता है, बोलते मैं इसे सुखी भी नहीं बनना चाहता। सैटिस्फाइड होने का स्थिति भक्ति में कोई होता ही नहीं, इसीलिए कि चैतन्य महाप्रभु का आना पड़ा, वो सैटिस्फाइड हो नहीं पाए इसलिए आना पड़ा। इसलिए पुरी में 18 साल गंभीर लीला प्रकट किए, यही तो उसका गंभीरता है। भक्ति में शांति वो बोलते हैं क्या उसको सैटिस्फाइड उसको संतुष्टि नहीं है, बढ़ता है यही भक्ति के पराकाष्ठ। जितने आप आगे बढ़ेंगे वो भी इतने बढ़ेगा, दोनों बैलेंस में बढ़ते जाएंगे। जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ देव हैं उन्होंने है कौन, वही स्वयं कृष्ण तो है। स्वयं कृष्ण वृंदावन से आज अलग हो चुके हैं, वो वृंदावन हा वृंदावन हा राधे हा गोपी, इस जो वृंदावन के विरह दशा है, इस ब्रज भाव के ब्रज विरह के जो दशा है उनका, उनका हाथ पर सिकुड़ गया है, आंख बाहर निकल आया है, ये जगन्नाथ जी का जो दृश्य है जो रूप है वो राधा भाव विरह विधुरा रूप है। ब्रज गोपियों के विरह के विकार विकार है, ये शारीरिक विकार है, हमेशा नयन बाहर निकाल करके हाथ को ऐसे करके हमेशा इस भाव में हा राधे हा ब्रज देवी के चललिते, इस मूड है जगन्नाथ जी का। तो उन्हीं को मैच करने के लिए दूसरा मूड चाहिए ना, वो था गौरांग महाप्रभु, वो भी कृष्ण थे लेकिन उनका मूड क्या था, वो राधा रानी का था, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। जगन्नाथ जी बोलते हैं हा राधे हा राधे, ये राधा रानी के हाल होते हा कृष्ण हा कृष्ण, दोनों का महामिलन यही होता है, महामिलन का क्षेत्र है ये। कृष्ण विरह में विकार, राधा विरह में विकार, और दोनों का सामना सामने होता है, यही मिलन होता है, यही गंभीर, और उसका कोई अंत नहीं है, कोई उसका ओर छोर नहीं पा सकता। कितने दूर तक वो विरह में करते चले जाएंगे, कितने दूर तक वो चले जाएंगे, शरीर क्या क्या विकार हो जाता था महाप्रभु का, एक गवाक्ष का छोटा छिद्र के अंदर चले जाते थे, हाथ पैर सब धागा के जैसा हो जाता था लंबा लंबा, कभी क्या होता था कभी क्या होता था। इस विरह के महादशा को तो वर्णन करना असंभव ही है, क्या नहीं सर, कैसे संतुष्टि हो सकता। हम जाते हैं जगन्नाथ जी को खूब दर्शन कर लिए, एक माला पहन लिए, भोग खा लिए, सैटिस्फाइड, अच्छा दर्शन हुआ नहीं। नित्य प्रति महाप्रभु जाते थे, डर के मेरे पास तक नहीं जा पाते थे कि पास जाने से संभाल नहीं सकते हैं, आपको संभाल नहीं सकते हैं, इसीलिए गरुड़ जी के पास खड़ा होते थे। ये ठाकुर जो है जिस विग्रह को हम देखते हैं ये कोई काट पत्थर का नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि अच्छा डिजाइन बना दे, न देव विद्यते काष्ठे न पाषाण न मृणमय, भाव ही विद्यते देवो तस्माद् भाव ही कारणम। प्रभु तो केवल भाव में ही विद्यमान है, भावग्राही जनार्दन, भाव ही कारण है, भावना ही केवल आवश्यकता, भाव ही भक्ति है, भक्ति जगत में भाव ही स्थिति है, इसी को प्राप्त करना है, भाव ही कारणम। तो यहां वृत्रासुर का जिस प्रकार की अति उच्च कोटि के कृष्ण भावना भाविति मति जो प्रार्थना है, एक असुर जोनि में होते हुए, इतने भीषण काय शरीर में होते हुए, युद्ध के प्रांगण में उपस्थित होते हुए, अस्त्र उसका नाश होते हुए, अंग छेदन होने का बावजूद सामने महाशत्रु इंद्र के होते हुए भी उनका कृष्ण भावना भाविति मति, हाय कोई सीमा है? हम सोचेंगे बहुत अच्छा साफ़रन कपड़ा पहना है, अच्छा कंठी लगाया, तिलक वो चकाचक किया, अच्छे भक्त होंगे, वो बिड़ब्यागी बिल्कुल कष्ट ले लिया है, क्या पहचानेंगे भक्त को? वृत्रासुर का रूप को तो देखो, उसका गुण को तो देखो, काम को तो देखो, क्या पहचानेंगे? जिसको देख करके देवराज इंद्र घबरा गया, चमत्कृत हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, वाह क्या आपने लड़ाई करने आए ना, भागवत क्लास देने आए? उनका युद्ध क्षेत्र में भक्ति के विवेचन होने लगा दोनों का, महापराक्रमी योद्धा दोनों ही थे, उनके प्रवचन को सुन करके इंद्र इतने जोश आ गया उसके अंदर, सब शर्म भरम छोड़ करके वज्र उठाकर फिर तैयार हो गया मारने के लिए। क्या स्थिति है? भगवान को अर्जुन के लिए 18 अध्याय बोलना पड़ा, फिर जाकर बोला हाँ आप आपके आज्ञा पालन करूंगा, फिर बोले अभी समझ में आया ना, अब तो गत मोह मरा दूर हो गया, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, अब तेरा वचन करूंगा। लेकिन वृत्रासुर इतने पोटेंट प्रवचन की आधा अध्याय में दो चार श्लोक में इंद्र को अंदर वज्र उठाना पड़ा, कितना पोटेंसी है उसका, क्या भावना भावित। इसीलिए कहते हैं कि भागवत वो शास्त्र है जिसमें इस वृत्रासुर का उपाख्यान दिया गया है, जिसको पढ़ने से भक्त विचलित हो जाता है कि भक्ति क्या है, क्या प्रभाव है इसका, क्या कर सकता है। सुने हैं हमने, हाँ असुर कुल उद्भव है, प्रहलाद महाराज भी असुर कुल में थे, बचपन से भक्ति का प्रभाव था उनके अंदर, छोटे वयस से हरि हरि जप करते थे। वृत्रासुर को तो अभी तक कोई देखा ही नहीं था ऐसे चैंटिंग करते हुए, ना किसी को प्रीचिंग किया हुआ कोई देखा था। प्रहलाद महाराज तो अपने स्कूल में गए, स्कूल के सारे स्टूडेंट को भक्त बना दिए, तंग हो गया हिरण्यकश्यप, उनका पीछे लड़ाई किया, कितने कितने फिर भगवान आए उनको परीक्षा लिए, लास्ट में सिंहदेव को प्रकट कराना पड़ा उनको, बलि महाराज उनके कुल में हुए, वो भी दानव थे लेकिन उनको भी सज्जनता उनका अंदर था, भगवान को दान देते छल में अपने गुरु को भी त्याग करके दान देने लगे, इसलिए बड़े माने जाते हैं प्रहलाद बलि, ऐसे महाभागवत महाजन में आते हैं। लेकिन वृत्रासुर कौन सा महाजन में आता है? रावण एक महाअसुर था, उसका भाई था विभीषण, वो भी कुछ कम नहीं था, लेकिन उनको भगवान के शरण के लिए रावण को छोड़ना पड़ा। अभी तक भी जब गृह शत्रु के विवेचना आता है तो नंबर वन में विभीषण को माना जाता है, घर के शत्रु के रूप में नंबर वन विभीषण है, भाई होने के नाते कम से कम लौकिक धर्म के अनुसार तो रावण का साथ देना था। तू प्रार्थना अंदर में करो, कोई मतलब नहीं अब, लेकिन कुंभकर्ण ने ये सब समझाया, लेकिन वो लड़ा रावण के लिए, अपने पितृकुल के जो राज्य है, भाई है, राज्य सब उसका समझ, सब को छोड़ करके शत्रु के शरण में चला जाना, घर के सारे भेद बता देना, नहीं तो भारी पड़ जाता भगवान राम के लिए, रावण को जितना और सारे विभीषण ने बहुत भेद बताया, प्रभु जी सब जानते हैं, रामायण में आप पढ़ेंगे, है ना। महागृहशत्रु, गृहशत्रु का उदाहरण विभीषण है, उस तरफ से छोड़ के इस तरफ आना पड़ा। लेकिन वृतासुर अपने असुर बुद्धि के साथ, असुर शरीर के साथ, असुर भाव के साथ अभी भी प्रवचन इतने करने के बाद में फिर लड़ाई करेगा। उनका दो हाथ अस्त्र शस्त्र सब इंद्र ने काट दिया, फिर भी उसको निकल जाएगा। इतनी बड़ी भक्ति के प्रवचन किया तब नहीं मान सा और जो मुझे मार दो, नहीं, सब जानते हुए कर्म श्रृंखला के अंतर्गत आपने जो असुर क्रिया वो पूरा पूरा किया, लेकिन भाव को बिल्कुल बचा के रखा। इससे इसी विषय को चर्चा करने से भक्ति की जो चमत्कारिता है उसको तो कोई और छोर नहीं मिलता है। क्या कैसे कैसे उसको पता कर सकते हैं? क्लास कब तक चलता है? 9 बजे। कैसे कैसे उसका कोई और छोर निकाल सकते हैं? रूप गोस्वामी जी भक्ति के प्रणेता है, आचार्य हैं, भक्ति रस अमृत सिंधु जिसने रचना की है, उन्होंने इस बात को एक चस्का देने के लिए एक कविता में कहते हैं, ये प्रार्थना लिखते उन्होंने, कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे, मम मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे। आगे कहते हैं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब न खाग्रमरीचि, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब न खाग्रमरीचि, इदमिच्छामिनि सम्यतवाच्युत, इदमिच्छामिनि सम्यतवाच्युत, तदपि कृपाद्भुतवीचि, तदपि कृपाद्भुतवीचि। कहते हैं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, विधि ब्रह्मा को कहते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी समाधि लगा करके बहुकाल पर्यंत समाधि योग के द्वारा भी विधिरपि ना पश्यति अपश्यति, वो देख नहीं सकते हैं। किसको? हे प्रभु, आपको देखना तो दूर बात है, आपको देख नहीं पाते हैं, आपके चरण को भी देख नहीं पाते हैं, आपके चरण के अग्रभाग के अंगुल्याग्रभाग के नख चंद्रमा को भी देख नहीं पाते हैं, देखने में असमर्थ रह जाते हैं। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्रमरीचिम, नाख के चरण को भी देख नहीं पाते, चरण के अग्र में नाख, नाख के अग्रभाग से जो कांति, जो एफ्लुजेंस निकलता है उसको भी देखना भारी पड़ जाता है ब्रह्मा जी को, अपने आयु के समय तक समाधि में रह करके। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्रमरीचिम, इदमिच्छामिनि सम्यतवाच्युत, इदमिच्छामि, मैं उसको देखने को इच्छा करता हूं, हे प्रभु मैं तो आपको देखने की इच्छा करता हूं। भाई तुम कौन है, किस बल पर आप मुझे देखने के लिए आता है, जिसको ब्रह्मदेव स्वयं इतने समय तक समाधि योग में रह करके चरण के अग्रभाग तक देख नहीं पाते हैं, आप मुझे देखना चाहते हो, बड़े साहस है आपका। हे प्रभु, इदमिच्छामि निसम्यतवाच्युत, मैं देखना चाहता हूं, कैसे ना, मैं सुन रखा हूं ना, क्या सुन रखा है रे, निसम्य विशेष रूप से सुन चुका हूं। तब अच्युत, हे अच्युत, आपके कृपाद्भुत वीचिम, आप अद्भुत कृपा के समुद्र के तरंग के बारे में सुन रखा हूं ना, अद्भुत कृपा के शक्ति के प्रभाव को मैं सुन रखा हूं, इसीलिए मैं आशा कर बैठता हूं, इदम इच्छामि निसम्य तब अच्युत, यद्यपि ब्रह्मा जी भी नहीं सकते समाधि के द्वारा। आगे कहते हैं, भक्तिर्दंचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री, भक्तिर्दंचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्री, परमेश्वरता तदपि तवाधिक परमेश्वरता तदपितवाधिक दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री। बोलते यद्यपि हे प्रभु, हे माधव, आपके प्रति मेरा हृदय में तिल मात्र भी भक्ति अभी उद्रेक ही नहीं हुआ है। भक्ति रुजंचति यद्यपि माधव न त्वयि मम तिल मात्री, तिल समझते ना सिस्मी सीड्स, ये तिल मात्रेण भक्ति मेरा हृदय में आपके प्रति अभी उद्रेक भी नहीं हुआ है, फिर भी आप साहस करता है। अरे भक्ति ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा मेरा कोई पास आ सके, लेकिन अभी आपके हृदय में भक्ति के रंच भर भी उद्रेक नहीं हुआ है तिल मात्र भी, फिर भी आपका इतनी बड़ी आशा कैसे? परमेश्वरता तदपितवाधित, क्योंकि आप परमेश्वर है, आपके जो परमेश्वरता है, आपके परम ईश्वरता का जो प्रभाव है, जो ईश्वरता ही है, तदपितवाधिक ये तो सबसे अधिक है। क्या करता है ना, दुर्घट घटन विधात्री, अति असंभव को संभव करने वाली है, दुर्घट को घटन करने वाली है। इस कारण से मैं अभी इदम इच्छामिनी सम्मितवाच्युत, हे अच्युत, मैं इसी को आधार करके इस शक्ति के द्वारा, इस आपकी श्रोता के कृपा के अद्भुत तरंग के प्रभाव के आधार करके, इसको आशा को उछावर करके आपके दर्शन करना चाहता हूं हे प्रभु। यही भक्ति है। फिर भी बोलते हैं भक्ति रुजन तंचति यद्यपि माधव न तो तिल मात्री, यद्यपि हमारा हृदय में तिल मात्र भी भक्ति ना हो, फिर भी इसी प्रकार भगवान की भगवत्ता ईश्वरता उनके कृपा, उसी को अगर हम थोड़े बहुत भी समझ लें, सुन लें, निसम्य समझना तो दूर की बात है, केवल सुन ले, कृतकृत्य हो जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। केवल सुनने मात्र सही, और करना पालन करना तो दूर की बात है। आपका समय हो चुका है, कोई किसी का शंका हो, कोई कमेंट हो, जय श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।